वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च जन्माष्टमी के इस मौसम में अभी भी जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। जन्माष्टमी का उत्सव और एक महीना भर चलेगा और जगह 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 उसकी उत्सव मनाया जाएगा।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उनको ही चलाओ।
तो हम सबको यह बताना जरूरी है, मंदिर में जन्माष्टमी होने के बाद में यहाँ पर उसमें मना रहे हैं जन्माष्टमी,
उसको उस तरह फंस सके आज कम आएगा।
तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो लाभ है वो सब व्यक्तियों को मिलना चाहिए, सब जगह के लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए अलग अलग जगह पर जन्माष्टमियां मनाई जाती है, मंदिर के अलावा हर जगह सब लोगों को अभिषेक देखने का मौका मिलना चाहिए, सब लोगों को अभिषेक करने का मौका मिलना चाहिए, सब लोगों को भगवान को भोग बनाने का मौका मिलना चाहिए, सब लोगों को अलग अलग जगह पर भगवान की कथा सुनने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम कोई जन्माष्टमी मनाते हैं और उसमें जाके आते हैं तो हमको थोड़ा सा आनंद मिलता है, लेकिन जब हम खुद उस जन्माष्टमी मनाने के लिए मेहनत करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो हमको कोई अलग आनंद मिलता है। इसलिए छोटे मोटे स्तर पर अलग अलग जगह पर जन्माष्टमी भी मनाते हैं, सब लोगों को भगवान की सेवा में डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए इंतजाम होता है। अगर मंदिर में जन्माष्टमी हो रही तो मुझे शायद इतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हो रही तो मुझे ज्यादा मौका मिलेगा। और यहाँ पर अलग से हमारे ठाकुर जी को, हमारे विग्रहों को अलग से हमें भोग बनाने का मौका मिलेगा, प्रसन्न करने का मौका मिलेगा। जन्माष्टमी नित्य उत्सव है, ये आप मत समझना कि जन्माष्टमी केवल अगस्त महीने में एक बार आती है। जन्माष्टमी ये नित्य उत्सव है। क्यों नित्य उत्सव है? जिस दिन भगवान का जन्म होता है वो जन्माष्टमी है। जिस दिन आप भगवान का नाम लेते हो, आप तिलदेव भगवान का जन्म होता है, तो जन्माष्टमी हुए कि नहीं? इसलिए भक्तों के लिए जन्माष्टमी रोज का उत्सव है। जो रोज का उत्सव जन्माष्टमी को भूल जाते हैं उनके लिए साल में एक बार याद करते हैं कि जन्माष्टमी होती है, होनी चाहिए। लेकिन जो बोल लोग भगवान का नाम रोज जपते हैं, बड़े प्रेम से उनको पुकारते हैं, रोज सवेरे नियमित रूप से संख्यापूर्वक प्रेम से भक्ति भाव से उनके लिए रोज जन्माष्टमी का अनुभव होता है और होना भी चाहिए। हम सब लोग को इसका सार समझना जरूरी है। इसके पीछे और भी एक रहस्य है कि जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा या गोवर्धन पूजा या और कोई उत्सव हरियाली तीज दुल्हन यात्रा जो भी कुछ आप मनाएंगे वही सिलसिला भगवत धाम में जाकर भी चालू रहेगा, ऐसा भगवान का वादा है। साधारण मत समझना आप वृंदावन धाम में मना रहे हैं और सोने पे सुहाग है, लेकिन मुंबई में मना रहे हैं दिल्ली मना रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी भक्ति भाव से लोग भगवान के आनंद के लिए भगवान की प्रीति के लिए प्रत्यर्थ उत्सव मनाते हैं वो उत्सवों का सिलसिला भगवान की कृपा से यहां से लेकर गौलोक धाम तक चालू ही रहता है। कंटिन्यूस प्रोसेस भगवान की दया से जो आप यहां कर रहे हो वही आपको वहां करने का मौका मिलेगा। कृपा है भगवान, इसलिए कहा गया है कि यहां का उत्सव जो है वो हृदय से मनाना चाहिए। ब्रज में है ना वो होते ना हिरण, भगवान को भगवान की आरती उतारते ऐसा बताया शास्त्र में लिखा है भगवत में। अभी ना उनके पास घंटी है ना दीपक है ना अगरबत्ती है ना जल है ना शंख है ना कुछ नहीं, तो कैसे आरती होगी? आरती किससे होती है? आरती घंटी से होती है कि दीपक से होती है? आरती किससे होती है हृदय से मन से होती है आरती। वो हृदय और मन की जो आरती करने की भावना है उसकी सहायता के लिए यहां की बाती और यहां का दीपक और यहां की घंटी होती है। वो तो साधन है आपकी भक्ति को जोड़ने के लिए। तो हिरण कैसे आरती कर रहे हैं? केवल नेत्रों से आरती कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ने वर्णन दिया है केवल नेत्रों से भगवान का पूजन कर रहे हैं और उनकी पूजा भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हृदय से की गई बात है, हृदय से निकली हुई हृदय तक पहुंचने वाली बात है, भक्त के हृदय से भगवान के हृदय तक। जब वो वार्तालाप होता है तो उसमें कोई घंटी की जरूरत नहीं होती। हम लोग वैसा उत्सव मनाना चाहते हैं जो हृदय से निकलता हो और हृदय तक पहुंचता हो, तब जाकर हमारी जन्माष्टमी सफल है। नहीं तो ये भी एक मैकेनिकल अफेयर है, चलो जाना है अभी ऑफिस में काम करते हैं तो है बैठना पड़ेगा जाना पड़ेगा चलो क्या करेगा, इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसे होगा तो ना वार्तालाप होगा ना संपर्क होगा ना कृपा आएगी। लेकिन हिरण जो होते हैं जो एक जानवर है फिर भी ब्रज के हिरण जो है नेत्रों से भगवान का पूजन करते हैं, हमसे कई श्रेष्ठ है हिरण जो ठाकुर जी का नेत्रों से पूजन करते हैं। तो हम लोगों को जैसे हमने हाथ में शंख पकड़ा भगवान के ऊपर जल छिड़ा गई दूध सब छोड़ दिया दीपक चलाया पहले, ये सब केवल साधन है, ये अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं है। ये परिपूर्ण तब होते हैं जब आपका प्रेम और भक्ति भावना उसमें जुड़ जाती है, तब उसकी स्वीकृति होती है ना? आपकी घी की स्वीकृति नहीं होती है, आपके भाव की स्वीकृति होती है। तो ये समझना है और यही मौका है। और नेत्रों से अगर आप उठ भी सकते नहीं आपके पास जो हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है वो नेत्र है, नेत्र से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे क्योंकि वो भावनाओं का अभिषेक चाहते हैं। यहां पर कितने किलो का घी आ रहा है कितने किलो का दूध आ रहा है उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान कितनी भावना का जोर लगा रहे उसके ऊपर आप उसके प्रसन्न होते। ये सब भावनाओं का मामला है, कोई धन दौलत का ऐश्वर्य और बड़े पद का मामला नहीं है। कितनी जोरदार जन्माष्टमी बनाई उस पर कुछ नहीं होता है, अरे भगवान तो वो दुर्योधन का इतना महाभोग 56 भोग छोड़कर चले गए, हाँ विदुर के घर पे जाकर केले का छिलका खाया उन्होंने, उनको क्या पड़ी है वो 56 भोग की, सब उनका ही दिया हुआ है, उनको क्या इंप्रेस करेंगे हम उनका दिया हुआ चीज से, उन्हीं का द्वारा दिया गया चीज से उनको प्रसन्न कैसे करेंगे, प्रसन्न होते भावना से। तो वो भगवान इतने दयालु भावना प्रधान भगवान जो है बार बार आते हैं जन्म लेते हैं अवतार लेते हैं लीला करते हैं ताकि तुम और हम सब जो है भावना से उनको पुकार सके, फिर उनकी ओर दोबारा फिर एक बार उनकी ओर आकर्षित हो जाए, उनके ओर अपना हृदय लगाए, भूल चुके उनको फिर भी उनको याद करें दोबारा, इसलिए वो बार बार यहां पर आते हैं। उनके विलापों का अर्थ हमको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन अगर लिया है, अगर हम जानवर नहीं है और मनुष्य है, तो हमें इन विलापों का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए और हमको समझ में आएगा, इस जीवन में आएगा और किसी भी यंत्र में नहीं आएगा, न जानवर के यंत्र में आएगा, न पंछी के यंत्र में आएगा, न पेड़ की योनि में आएगा, केवल मनुष्य के यंत्र में समझ में आएगा वो। और वो प्रयास करने के लिए ये जीवन दिया है, फैशन करने के लिए नहीं दिया है, ऐश्वर्य कमाने के लिए नहीं दिया है, धन दौलत इज्जत कमाने के लिए नहीं दिया है, उनको जानने के लिए जीवन दिया है इन्होंने। इतनी बुद्धि उनको समझने के लिए दी गई है। समझना क्या है उसमें? समझना यह है कि उनका यहां आना जाना, जो आते जाते रहते ना, वो यहां पर लीला करते रहते हैं, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो दिव्य है, ये समझने के लिए वो जाते आते रहते हैं हमको। और वो अगर दिव्य है, हमको समझ में आया, तो हमको इस जीवन के अंत में दोबारा यहां पर आना जाना नहीं पड़ेगा। हमारा भी आना यहां पर आना जाना यहां निरंतर, हाँ, हमारा भी चलते रहता है। वो हमारा आना जाना जो है उसको अगर बंद करना है, तो उनका आना जाना क्या है वो समझना जरूरी है। जब उनका आना जाना समझ में आएगा, तो हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया ना? आपको हमारा आना जाना बहुत क्लेशदायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। उनका आना जाना हमारे लिए उद्धारक होता है। तो उनके आने जाने की दिव्यता है, वो दिव्यता अगर आपको समझ में आएगी, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न नैति माम इति तो अर्जुन, ये अगर आपको समझ में आता है, भगवान कहते हैं, तो दोबारा आपको शरीर छोड़ने के बाद में यहां पर आकर तड़पने की जरूरत है। तो वो जो उनका आना है वो किस तरह से दिव्य है, ये भगवत ने समझाया। श्रीमद भागवत जो है बताते हैं ये दिव्यता जो है उनके आने की कैसी है। हमारे जन्म जो हुआ है कैसे हुआ है? स्त्री पुरुष एकत्र हो गए, फिर गर्भ धारणा हुई, फिर 9 महीने पेट में हम रहे, योनि मार्ग से हमारा जन्म हुआ। माता को भी कष्ट हुआ, हमको भी कष्ट हुआ, और माता भी रो रही थी, हम भी रो रहे थे, तो दुनिया हंस रही, ताली बजा रही, हम रो रहे हैं ना, ऐसे सब लोग बर्थडे मना रहे हैं जन्म का, लेकिन बच्चा रोते रहता है और दुनिया खुशी मनाते रहती है। फिर जब हम जाते हैं तो दुनिया रोती रहती है। ये हमारे आने जाने का अर्थ है, सब दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहां का सब दुखमय है। लेकिन भगवान का जन्म जो है वो ऐसा नहीं। अब इसलिए आपको इस दिव्य जन्म की कथा सुनाते हैं, आपने कई बार सुनी होगी, फिर एक बार बताएंगे, फिर एक बार आप सुनेंगे, क्योंकि उसी को बार बार सुनना है, मनन करना है, चिंतन करना है, याद करना है, उसी पर जीवन चलाना है। वही हमारा क्या कहते हैं ना उसको, एनर्जी सोर्स है हमारा, पावर सोर्स, पावर हाउस है, जहां से हमको शक्ति प्राप्त हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण। हमारा कान जो है वो उनके ही श्रवण के लिए दिया है और किसी के लिए नहीं दिया है। बाकी सब जो हम सुनते हैं, हाँ, झाड़ दो सुनते हैं ना, नाचते हैं लोग पागल की तरह, वो सब हमारे नरक वास का कारण है, उनको नरक भेजने वाला म्यूजिक है वो सब। भगवान के अलावा जो भी हम लोग दुनिया की बातें करते हैं, वो सब नरक का रास्ता बनाता है, पक्का रास्ता है, ताकि आसान से पहुंच सके वहां पर। लेकिन उनके बारे में सुनने से उनके यहां पहुंचा, जिसके बारे में सुनोगे वहीं पहुंचाओ, जिसके बारे में सुनोगे उसी की याद आएगी, और जिसकी याद आएगी वहां हम पहुंच जाएंगे। यम यम वापी स्मरण मारूं त्यजते अंते कलेवरम, जिस जिसकी याद करोगे जाने के जाने के समय वही जगह पहुंच जाओगे। मेरे याद करोगे मेरे पास पहुंच जाओगे, और मेरी याद करना है तो मेरे बारे में सुनना होगा, समझना होगा कि मैं कौन हूं, भगवान कैसे। तो कैसे हुआ आरंभ ये सब? भगवान तो बहाना ढूंढते हैं कैसे आना चाहिए। संभव आमी युगे युगे, मतलब क्या? अनंत बार आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग देश में आते हैं, अलग अलग योनि में आते हैं। ये मत समझना कि भगवान केवल मनुष्य योनि में आते हैं, ये गलत और संकुचित धारणा है। भगवान इतने अनंत है कि हर योनि में हाँ जन्म लेते हैं, देवता योनि में जन्म लेते हैं, मनुष्य योनि में लेते हैं, प्राणी योनि में लेते हैं, जलचरों में लेते हैं, समुद्र के अंदर लेते हैं, समुद्र के बाहर लेते हैं, क्योंकि वो केवल मनुष्य से प्रेम नहीं करते, हर जीव से प्रेम करते। हर जीव जो अलग अलग भेष धारण करके, अलग अलग वस्त्र धारण करके जी रहा है। मतलब कोई पक्षी का वस्त्र धारण किया है, कोई मनुष्य का किया है, कोई जानवर का किया है, कोई पेड़ का किया है, कोई मछली का किया है, कोई कीटक का किया है। ये सारे भेषों के अंदर जीव तो वही है जो भगवान का बालक है, और सब बालकों पर जो अलग अलग भेष में घूम रहे हैं उन सबके कल्याण के लिए भगवान बड़ी करुणा के कारण बार बार आते रहते। और इस बार क्या बहाना हुआ, इस बार बहाना ये हुआ कि पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ गया। पृथ्वी जो है वो कभी भी कितना भी भार सह सकती है, अनंत भार सह सकती है, लेकिन वो पाप का असत्य का भार नहीं सह सकती। उतनी पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े पर्वत है, हिमालय है, सह्याद्री है, विंध्याचल है, क्या क्या नहीं है, पर पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पर्वत है, इतने हजारों जीव जीव जीते हैं उसके ऊपर, उसका भार पृथ्वी को नहीं होता है। जैसे एक माता को अपने बालक का भार नहीं होता कभी, कितना भी वजनदार बच्चा जन्म होगा ना, माता को भी वजन नहीं होता उसका। कितना भी भारी बच्चा पेट में होगा तो पेट पे लेके माता घूमती रहती है, क्योंकि वो प्रेम का भार होता है। जब वो पाप का भार होता है तो उसको असह्य हो जाता है। तो पृथ्वी वो पाप और असत्य का भार सह नहीं कर सकती, इसलिए वो दुखी होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपनी दुखी दुख भरी कथा जो है वो ब्रह्मा जी को बताती है। मुझे नहीं सह हो रहा है, ब्रह्मा जी भी बोले कि मैं क्या करूं, मैं भी आपको आगे ले जाता हूं। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, वायु, अग्नि सबको लेकर, पृथ्वी को लेकर वो वैकुंठ गए, क्षीर सागर किनारे। तो अपने यहां पर एक वैकुंठ है, अपने लोक में भी एक वैकुंठ है, इसका नाम है श्वेत द्वीप, जिसमें भगवान विष्णु विराजमान, क्षीर उदक शाही विष्णु। वो ब्रह्मा से भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उनको ब्रह्मा जी खाली प्रार्थना करते हैं, फिर उसके लिए संदेश आता है। संदेश क्या आता है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि ये काम अभी मेरे बस का नहीं है, इस काम के लिए मेरे मालिक जो है स्वामी श्री हरि श्री कृष्ण उन्हीं के पास जाना। तो फिर विष्णु जी, ये गर्ग संहिता में कथा थी, भागवत ने वो संक्षेप में दिया, गर्ग संहिता में बताया गया कि विष्णु जी फिर ब्रह्मा शिवादि सभी देवताओं को लेकर, गाय को लेकर, पृथ्वी को लेकर उन्होंने ब्रह्मांड को पार किया। जिस छेद से वामन देव ने नख लगाया था ना, उसको वहां से छेद हुआ था, वहां से विरजा नदी का जल अंदर आया, उस छेद से वो सब निकले, विरजा में गए, विरजा को पार किया, विरजा से पार कर ब्रह्म ज्योति में गए, ब्रह्म ज्योति से पार करके अनंत वैकुंठों को पार करके परम वैकुंठ जो है गोलोक धाम में उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर शत चंद्रानना नाम की गोपी खड़ी थी, तो सब विष्णु भगवान ने उनको प्रयोजन बताया कि हम लोग कहां से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान से कह देना कि ब्रह्मा जी आए। तो सत्यचंद्रानन्ना कहती है कि वह भगवान से जाकर बोल के आए। तो अंदर गई, भगवान को बताया कि कोई ब्रह्मा जी आए हैं, तो कह रहे हैं आपको मिलना है। तो भगवान ने उनको ये सब दुर्गा संहिता में बहुत विस्तार में दिया। तो भगवान ने कहा कि पूछो तो वहां से कौन से ब्रह्मा है। तो सत्यचंद्रानन्ना गोपी जो है वो आई और पूछी कि आप भगवान हमारे स्वामी पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा है। बोले तो भाई ये क्या प्रश्न हुआ, हम तो ब्रह्मा है, दस ब्रह्मा है। बोले ऐसा नहीं होता है, उनके सामने अचानक सब ब्रह्मा प्रकट हो गए। ये लीला द्वारका में भी हुई है, वैद्य ये लीला जो है द्वारका में भी हुई है। तो द्वारकाधीश भगवान जब यहां पर लीला कर रहे थे तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे थे, तभी भी ये हुआ है। तब ब्रह्मा जी को सामने अनंत ब्रह्मा प्रकट हुए, अलग अलग ब्रह्मांडों से आए। तो ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि अरे मैं भी अकेला ब्रह्मा नहीं हूं, बहुत सारे ब्रह्मा है। तो नम्र हो गए बेचारे। फिर सबको उन्होंने भगवान ने अंदर बुलाया, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने सब लोग प्रकट हो गए और अपना निवेदन किया उन्होंने। तो बहुत अद्भुत घटना घटी उस समय कि पृथ्वी देवी अपना निवेदन कर रही है, तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हजारों सूर्य का प्रकाश तेजमान शरीर था और अपने दिव्य स्वरूप से वहां प्रकट हो गए सबके सामने और सीधे भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। फिर वहां से प्रभु रामचंद्र आए, 1,00,000 घोड़े से जुता हुआ रथ था उनका, जिसमें केवल वो अकेले नहीं थे, भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता देवी, शत्रुघ्न भरत, शत्रुघ्न और सारी वानर सेना, अरे अयोध्या वासी सब थे उस रथ में। और बड़े शान से भगवान रामचंद्र वहां पर आए, लाखों सूर्य सा प्रकाश था उनका। सभी लोगों के साथ भगवान रामचंद्र श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। तो उसके बाद में यज्ञ पुरुष नारायण जी अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए, विलीन हो गए। नर नारायण ऋषि भगवान जो है जब तपस्या करने का मन होता है तो नर नारायण ऋषि बन जाते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, बड़ी लीलाएं उनकी। तो नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए वहां पर तेज पुंज जो पृथ्वी पर अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, बाद में वो भी कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। उस तरह से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भगवान के अवतार प्रकट होकर भगवान के शरीर में विलीन हुए। फिर भगवान बोले, ये देवताओं तुम सब लोग यदुकुल में जाकर जन्म लेना, यदुकुल की स्त्रियां और यदुकुल के पुरुष बनकर अवतार लेना, वहां पर गोकुल में भी अवतार लेना, और मैं यथावकाश वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और पृथ्वी पर जो समस्या है उसका समाधान करूंगा। उस समय ये जब वार्तालाप चल रहा था तो राधा रानी बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी दुखी हो गई, मूर्छित सी हो गई। तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा कि आप जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा? तो कृष्ण ने कहा कि हम आपको ले जाएंगे, पहले से योजना बनी हुई है, तो हम कैसे आ सकते हैं? श्री वृंदावन श्री गोवर्धन और यमुना के बिना नहीं आ सकते। अच्छा, तो भगवान ने अपने अनंत गौलोक धाम से 84 कोस भूमि गिरिराज गोवर्धन और यमुना जी को पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए इस वृंदावन को क्या कहते हैं? भौम वृंदावन। जो भूमि पर प्रकट हो गया है उस वृंदावन को भौम वृंदावन कहते हैं। और उस पर गिरिराज गोवर्धन जो वृंदावन का अविभाज्य घटक है, अविभाज्य अंग है उसका, वो गोवर्धन गोवर्धन और यमुना जी वो यहां पर प्रकट हो गए। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो जब आता है तो अपना घर लेके आता है। हम आए हैं वृंदावन, हमारा घर मुंबई में है, मैं तो अकेले यहां पर घूम रहा हूं। भगवान जब आते हैं तो अपना पूरा घर लेके आते हैं और अपने घर में रहते हैं। कहा गया है कि भगवान कभी भी एक भी कदम वृंदावन के बाहर रखते नहीं, क्योंकि वो अपना घर लेकर आते हैं यहां पर। उधर ही जो विहार करते हैं अपने घर में विहार करते हैं। इसलिए वृंदावन न एक पदम न गच्छति, एक पदम भी वो बाहर कभी रखते नहीं। ऐसे भगवान है दिव्य, इसलिए वो भगवान है, इसलिए उनका अवतार साधारण नहीं है। लीला जो उनकी होती है जन्म की साधारण नहीं है, दिव्य है। तो फिर उन्होंने और भी वर्णन किया, वो वर्णन बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान ने कैसे सबको समझाया लोगों को, अभी तो बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है उसका, तो वो करेंगे तो जन्म की कथा रह जाएगी। इसलिए आपको सबसे बताते हैं कि भगवान ने कहा कि तो मेरी लक्ष्मी जी है जो विष्णु के साथ में रहती है, वो रुक्मिणी के रूप में भीष्मक राजा के दरबार में विदर्भ देश में जन्म लेगी। फिर वो कहते हैं कि मेरे भैया जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के गर्भ में जन्म लेगी, रोहिणी उनकी माता है। तो पार्वती देवी शिव की पत्नी है, वो जाम्बुवान की पत्नी जो लड़की है जाम्बुवती, जाम्बुवती के रूप में जन्म लेगी। जो अग्नि नारायण की यज्ञ पुरुष की पत्नी है वो लक्ष्मणा देवी जो आगे जाकर मेरी पत्नी बनेगी उसका अवतार लेगी। और गंगा देवी जो है मेरी दूसरी पत्नी बनेगी मित्रविंदा नाम की, और भोगवती जो है मेरी भद्रा नाम की पत्नी बनेगी, और कामदेव जो है प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र के रूप में आएंगे। ब्रह्मा जी आप स्वयं जो है अनिरुद्ध के रूप में आएंगे जो प्रद्युम्न के पुत्र होंगे, और द्रोण नाम के वसु जो है तो नंद महाराज बनेंगे, और धरा नाम की जो देवी है यशोदा देवी बनेगी, गोकुल में जन्म लेंगे। भगवान विस्तार वर्णन किया। सुचंद्र नाम के जो देवता है वो विष्णु बनेंगे, और कलावती नाम की देवी राधारानी की मैया बनेगी, कीर्तिदा देवी। इस प्रकार से उन्होंने दिव्य वर्णन किया। उसी समय उन्होंने योग माया को पुकारा जो उनकी अंतरंग शक्ति है, और कहा कि जब हम अवतार लेने को आएंगे, हमारे पहले हमारे भाई अवतार लेंगे, तो उनका जो गर्भ है देवकी के गर्भाशय से निकालकर आपको रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करना है, और आगे जाकर जब मैं जन्म लूंगा देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा तब आपको यशोदा के गर्भ से जन्म लेना है, और फिर आपको यहां से वहां किया जाएगा। ये सब आदेश भगवान ने दिया, और इस सेवा के लिए आपको मेरी बहन के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी, आप मेरी बहन बन जाओगे, और आपका अलग अलग नामों से गौरव हुआ, जैसे कि चंडिका और पार्वती और भद्रा, बहुत सारे नाम हैं। उस नाम से सारे देवता लोग भी आपकी पूजा करेंगे। ऐसे भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया और योग माया ने बड़ी प्रेम से अपनी सेवा को प्राप्त करके योग माया धन्य हो गई। अभी जब कंस में एक बार गर्ग मुनि जो है वो मथुरा के दरबार में आए, मथुरा के दरबार में ये जो हमारे उग्रसेन है वो भी मरुत देवता है। मरुत देवता मतलब 49 मरुत होते हैं, 50 मरुत होते हैं। वो देवता जो है वो उग्रसेन के नाम से प्रकट हो गए और वो मथुरा के राजा बन गए। इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था। तो वो उग्रसेन के दरबार में वो बड़े ऊंचे आसन पर बैठे थे, नीचे अक्रूर देवक और अक्रूर देवक और कंस जैसे महारथी सेवा के रूप में खड़े थे हाथ जोड़कर। उसमें गर्ग मुनि प्रवेश करते हैं और उग्रसेन जो है अपना आसन छोड़कर नीचे आते हैं। गर्ग मुनि को बड़े प्रेम से अपने आसन पर बिठाते हैं, पैर धोते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तब गर्ग मुनि बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे अरे देवक, देवक राजा खड़े वहां पर, तो कहते हैं कि शूरसेन के जो पुत्र है वसुदेव, इनके लिए आपकी लड़की जो है वो सुवित्य योग्य पत्नी है। आपकी लड़की के लिए वसुदेव सबसे श्रेष्ठ हुआ है, इसलिए आप तुरंत उनकी शादी कर दो। साधु जो होते हैं साधु पुत्रकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। तो भगवान की लीला को बढ़ाने के लिए, भगवान की लीला को पुष्टि देने के लिए गर्ग मुनि ने भविष्य को देखते हुए यह आदेश दिया कि देवकी का विवाह वसुदेव से होना चाहिए। और देवकी कंस की चचेरी बहन थी, बहुत प्रेम था उसके ऊपर। और वसुदेव भी बड़े मशहूर व्यक्ति थे, शादी के पहले भी सत्यवचनी के रूप में प्रसिद्ध थे वो पूरे विश्व में। अपने वचन को पालने वाले अटल व्यक्ति थे, बड़ा सम्मानपूर्वक व्यक्ति थे वो। और कंस का भी उनका बड़ा बड़ा स्नेह था, तो कंस भी तुरंत राजी हो गए। युवराज था ना कंस, उग्रसेन का पुत्र युवराज था, बड़ा बलशाली था वो। उसने चारों ओर दिग्विजय करके सभी राक्षसों को अपने वश में करके रखा था। एक अध्याय पूरा उसके नाम पे वर्ग संहिता, कंस की दिग्विजय। कैसे कैसे जिस दिन राक्षसों का वर्णन भागवत में आता है उससे भी अधिक राक्षसों का वर्णन गर्ग संहिता में दिया है। और कैसे कंस ने जा जाकर उनको परास्त किया, मजे मजे में खेल खेल में जाकर उनको आह्वान किया, परास्त कर दिया, पटक दिया और उनको अपना दास बना दिया। ऐसा वीर पुरुष महाबली चक्रवर्ती सम्राट कंस भी वहां पर खड़ा था, युवराज था वो मथुरा का, बड़ा खुश हो गया वो और तुरंत उसने विवाह का इंतजाम किया। बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह हुआ और इतना प्रेम का अनुभव किया कंस ने कि उसने कहा सारथी तुम उतर जाओ, इन दोनों की बारात का जो घोड़ा है जो रथ है वो मैं आऊंगा। कोई क्षत्रिय के लिए रथ हारना कोई बड़ी बात मतलब सम्मान की बात नहीं, लेकिन प्रेम के वश भगवान ने भी अर्जुन का रथ हारने का काम सौंप ले लिया था। प्रेम ऐसा चीज वस्तु है ना, वो ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाता है। जब प्रेम होता है तो वो ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाता है। प्रेम सभी नियमों को बंधनों को मर्यादाओं को तोड़ देता है। तो इस प्रेम की वजह से जो भी उसको महसूस हो रहा है अपनी बहन के प्रति, उसने सोचा सारथी तो उतर जा, मैं सारथी बनूंगा, लगाम अपने हाथ में लूंगा, चाबू को अपने हाथ में लूंगा और दूल्हा दुल्हन को अपने हाथ से रथ चलाकर उनके घर पहुंचाऊंगा बारात को। कितना मधुर दृश्य है, देखिए आप वाद्य बज रहे हैं, ब्राह्मण लोग श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, गीत गायन कर रहे हैं, भेरी मृदंग धुंध भी ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य गाए जा रहे हैं, नृत्य जो करने वाले लोग हैं नर्तक नृत्य कर रहे हैं, बड़ा आनंद का मौसम है। रंग हुए उजड़े जा रहे हैं हवा में, सुगंध उतरा जा रहा है, सब जगह पे आनंद आनंद है, दूल्हा दुल्हन बहुत खुश है। ऐसे खुशी के मौके पर अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन का बड़े प्रेम से तू रथ हाँक रहा है उसी के आठवें पुत्र से तेरा अंत होने वाला है। और जैसे ही ऐसी आकाशवाणी होती है तुरंत सारे वाद्य बंद हो जाते हैं, सारे श्लोक नाच सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि अचानक कंस जो है अपना सारा मन का संतुलन खो बैठता है और अपनी तलवार निकालकर एक हाथ से जिसमें उसने लगाम पकड़ा था वो छोड़कर देवकी के बाल पकड़ता है। और उस तलवार जिस तलवार की चमक को देखकर इंद्र भी डरते थे, कांपते थे अपने लोक में, उस भयंकर तलवार से उसने दिग्विजय किया था, सभी शूरवीरों पर विजय प्राप्त किया था। वो तलवार उसने एक अबला स्त्री को मारने के लिए उठाया इतनी तेजी से, सब दंग रह गए। तब अचानक सारे माहौल में गंभीरता छा गई, सन्नाटा छा गया, अभी क्या होगा। लेकिन वसुदेव ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि उनको संकट के समय भी क्या करना चाहिए उसकी बड़ी सरसत वेर बुद्धि थी उसके पास। झट से हाथ आगे करके उसका तलवार वाला हाथ जो है रोक लिया और कहा, एक अंश से भाई, एक अबला पर वार करते हो, तुमने तो इतने दिग्विजय लोगों पर जाकर दिग्विजय करके बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर दिया, तुमने तुम्हारे वीरता से देवता भी परास्त हो गए और तुम्हारे डर से वो कांपते हैं, इस तलवार से तुमने उनको डराया और तुम अबला पर तलवार चलाओगे, क्या तुम्हारी कीर्ति होगी। लेकिन कंस के पल्ले में कुछ नहीं पड़ रहा। जब आदमी भय क्रोध या वासना से लिप्त होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब यहां पर उसको भय से वो ग्रस्त है, या तो भय कहिए, द्वेष कहिए, तो वासना कहिए, जीवन के लिए परेशान था, उससे प्रभावित हो गया था। तो ये सारी बातें जो है ना, वो सत्य बातें कर रहा था कि जिस तलवार से तुमने वीरों को परास्त किया है, उसको एक अबला को परास्त करोगे या तो उसे मारोगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। लेकिन कंस कोई बात ध्यान में नहीं आई, वो हाथ तलवार उठाए रहा हो, सुदेव ने और दिमाग चलाया। सुदेव ने कहा, जैसे कि जब भी किसी वासना से बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो केवल जो सबसे निचली बात है ना, एकदम घटिया बात जो है वो समझने के लिए आसान होती है, वही समझ में आती है, क्योंकि बुद्धि का स्तर जो है एकदम घट जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होने पर कुछ समझ में नहीं आता। तो जो उसको समझ में आएगी ऐसी बात उसने सोचकर की, जो निम्न स्तर की बात थी, पहली बात उच्च बात थी कि तुम्हारे कीर्ति का क्या होगा, वो कीर्ति वाली बात समझ में नहीं आई, तो एकदम नीचे जाके बात किया उन्होंने। क्या बात की, देखो भाई तुम्हें डर किससे है, देवकी के आठवें पुत्र से, सातवें से भी नहीं और सातों से भी नहीं और देवकी से भी नहीं और मुझसे भी नहीं, डर तुम्हें भय जो है मृत्यु का वो आठवें पुत्र से है। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मुझे जो पुत्र होगा तुमको मैं लाके दूंगा, अभी छोड़ दो उसको। वो बात समझ में आए, क्यों समझ में आए, क्योंकि वसुदेव का ऐसा पोजिशन था कि जो वो कहेगा वो पालन करेगा, वो अगर मैं कहता या वो कोई कहता तो नहीं मानता। जैसे भीम ने कहा अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोण ने कहा मैं नहीं मानता, अगर युधिष्ठिर कहेगा तो मानूंगा। किसी किसी का व्यक्तिमत्व ऐसा होता है, इसके जबान की वैल्यू होती है, वो कहेगा तो मान जाते हो। तो युधिष्ठिर ने के पास गए, तभी द्रोणाचार्य जो भी है वो आगे की लीला तो बड़ी है, कहने का तात्पर्य भीम ने कहा तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन यहां वसुदेव ने कहा तुरंत उसकी तलवार म्यान हो गई, बंद हो गई तलवार। मैंने कहा ठीक है वसुदेव तुम कह रहे हो मान जाता हूं, तुरंत बाल छोड़ दिया उसके और वो डिस्टर्ब हो गया बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई आनंद की घटना में वो मदंग बज रहे, तुरंत आकाशवाणी हो गई, सारा माहौल बदल गया, तो भी परेशान हो गया, तुरंत चला गया वो। और फिर बारात अपने आप शांति से निकल गई, बातें करते सब बंद हो गए, नाच बात सब बंद हो गया और घर चले गए सब लोग। एक साल हो गया, पहला पुत्र हुआ, कीर्तिमान रखा, नाम रखा गया, कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जैसा वादा किया था वैसे बालक को लेकर आया। इतनी बड़ी बात है, सोचा एक साल पहले कुछ घटना हुई है, हाँ अभी किसी को याद भी नहीं होगी, वसुदेव ने अपना दिया हुआ वचन पाला। भरी दरबार में जहां पर युवराज कंस बैठा था वहां पर वो आया, उसने कहा कि मेरा ये पहला बालक है आपके लिए हाजिर है। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया, अरे वाह क्या बात, अपने बालक को जन्म देने के पश्चात तुम्हारा मन नहीं बदला, इतने सच्चे वचनी हो, जाओ कंस जाओ वसुदेव जाओ अपने बालक को ले जाओ, इस बालक से मुझे कोई डर नहीं है, इसे जीवन जीने दो, मुझे आठवें बालक का डर है उसके बारे में सोचेंगे। तो बड़े खुशी से वो वसुदेव अपने बालक को घर ले गए। तो नारद मुनि स्वयं ये कथा बता रहे हैं, राजा बहुलाश्व नारद मुनि कह रहे हैं कि इसके बाद मैं गया कंस के पास और नारद मुनि ने कहा कि ये कंस तुम देवताओं का तरीका जानते नहीं हो, ये आकाशवाणी देवता लोग करते हैं ना, इनका सारा तरीका उल्टा होता है, सारी गिनती उल्टी होती है। उन्हें एक श्लोक बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो श्लोक ऐसा उसका आता है कि देवताओं के सारे कार्य और गति उल्टी होती है, सामान्य वर्ग के समझ में नहीं आता। तुम जिसको प्रथम बालक समझ रहे हो वो देवताओं के हिसाब से आठवां वाला हो सकता है, हम तुम बड़े शान से उसको रिहा कर रहे हो। ये लो इस कमल को पकड़ो, उस कमल को पकड़ाया और एक पंखुड़ी को हाथ में दिया, बोला एक पंखुड़ी को एक नंबर दो और यहां से आठ गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कौन सा आठवां नंबर है? ये आठवां नंबर है। अभी ये पंखुड़ी को पहला पकड़ो और आठ गिनो, अरे फिर आठवां पंखुड़ी दूसरा आ गया, तीसरी बार तीसरा पंखुड़ी पकड़ो पकड़ा गया तो तीसरा और कोई पंखुड़ी आठवां नंबर का आया, तो बोलो आठवां नंबर का पंखुड़ी है कौन सा? जब पहला नंबर का पंखुड़ी फिक्स नहीं है तो आठवां कैसे आना पड़ेगा, कौन सा आठवां है? इस तरह से तुम्हें कुछ पता नहीं गणित क्या है इनका, देवताओं का, तुम क्यों रिस्क लेते हो? कौन सी बात तो समझ में आ रही, जो स्वार्थ में होती है वो संपूर्ण समझ में आती है, जब अपकृति की बात बताई समझ में नहीं आई, स्वार्थ की बात तुरंत समझ में आई। तुरंत 10,000 सैनिकों को भेजा उसने, उसने देखो उसको हर्ष अरिष्ट में कर लिया, उसने कैद कर लिया उसने, वो बालक जाके छीन लिया और पत्थर पटक कर माता के सामने मार दिया उसने। देवकी चीखती रही पुकारती रही, मेरी बालक को मत मार। हर एक साल के बाद में एक ही बालक का जन्म हुआ और उसी कारागृह के अंदर तो हजारों सैनिकों से सुरक्षित था, उस कारागृह में हर एक साल में एक ही बालक को पटक कर रौन दिया गया, उस कारागृह में खून के चिन्ह बने, एक एक के बाद एक से छह चिन्ह बने, छह बालकों का वध किया गया बड़ी क्रूरता के साथ। वीर होता है तो वो आह्वान करता, सावधान करता है, फिर युद्ध करता है, फिर युद्ध में परास्त करता है, खुद मर जाता है, बालक को क्या मारना है। लेकिन फिर भी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो फिर ऐसे जघन्य कार्य करने लगता है। फिर बुद्धि को अगर शांत रखना है तो उसको भगवान के विषय में ज्ञान देना चाहिए। जब भगवत ज्ञान प्राप्त होता है तो भ्रष्ट बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उसी बुद्धि से फिर अच्छे कार्य मन के द्वारा होते हैं। ये छह पुत्र कौन थे? उनको ऐसे ही मरना था उनको, क्योंकि वो हिरण्यकश्यपु के पोते थे, हिरण्यकश्यपु के प्रपोत्र होने के कारण उनको एक बार शाप मिला था, उन्होंने उनका अपराध किया तो हिरण्यकश्यपु ने उनको शाप दे दिया कि तुम मनुष्य जन्म लोगे। अभी राक्षसों के लिए ये गर्व की बात है कि राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं। इस रावण ने कहा था ना, अरे वो दो तुच्छ मानव उनको तो मैं नाश्ते में खा लूंगा, क्योंकि उसका राक्षसों का ऐसा गर्व होता है दानव दैत्य और राक्षसों का कि मनुष्य हमारे से नीचे लोग। इसलिए राक्षस रावण ने जब वरदान मांगा ना ब्रह्मा से कि मुझे देवताओं से वरदान, ये बद नहीं होना चाहिए, मेरा शस्त्र से नहीं होना चाहिए, अस्त्र से नहीं होना चाहिए, बहुत सारा वरदान मांगा। रावण ने भी बहुत सारे वरदान मांगे लेकिन मनुष्य के बारे में नहीं वरदान मांगा, मनुष्य तो क्या है मैं तो उसको खा लूंगा, ऐसे इसे क्या बार बार मन मांगना है और इनका टाइम वेस्ट करना है। तो वैसे हिरण्यकश्यपु ने उनको शाप क्या दिया कि तुम मनुष्य बन बनोगे और जन्म होते ही मर जाओगे, वो छह बालक थे, इसलिए वो भी अपने रिश्तेदार के द्वारा ही मर जाओगे, तो इसलिए जन्म होते ही उनको पटक कर उनका वध किया गया। ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल कैसा होता है ना कोई समझ नहीं सकता है। कुछ कुछ बातें हमको बताई गई समझ में आ रही है, बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती कि क्यों हो रहा है। इसलिए कर्म का खेल कटक कट करना है तो भगवान का नाम ही ले सकते हैं। कर्म का मूल जो है, बीज जो है, वो भगवान के नाम देने से नष्ट हो सकता है, बाकी दान पुण्य तीर्थ करने से केवल ऊपर ऊपर से कर्म नष्ट होते हैं, बीज नष्ट नहीं होता है। जैसे पेड़ काटते ना, पेड़ हम लोग ऊपर से काट दिया जमीन तक साफ करके बोला, कुछ देर बाद फिर वापस पेड़ आता है, क्योंकि जड़ नहीं निकाली उसके नाम में। जब जड़ निकालना है तो जमीन खोदना पड़ेगा, थोड़ा जड़ खोद के निकालना पड़ेगा तभी वो नष्ट हो जाएगा। उस तरह से कर्म की जड़ जो है वो नष्ट करना है तो भगवान के नाम का जप एक ही मार्ग है, बाकी दान पुण्य तपस्या जो है केवल पेड़ को ऊपर काटने से जैसा है। तो उसके बाद में सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी देवकी के गर्भ में स्थापित होते, स्थापित होते ही योगमाया ने उसको आकर्षित कर लिया और रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर लिया। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि रोहिणी के गर्भ में स्वयं बलराम जी विराजमान थे और बलराम जी के जो अंश अवतार है शेष अनंत शेष वो देवी के गर्भ में आए और शेष को संकर्षित करके बलराम जी वाले गर्भ में स्थापन किया गया और शेष जी जो है वो बलराम जी में लीन हो गए जो रोहिणी के गर्भ में पहले से थे। क्योंकि जब ये पहली बार कीर्तिमान का वध किया गया और अरेस्ट किया गया उनको वसुदेव देवकी को, तुरंत वसुदेव ने अपनी पहली पत्नी को, दूसरी पत्नी को जो गर्भवती थी उसको गोकुल भेज दिया अपने मित्र के पास, नंद के पास, सुरक्षा के कारण से। उनके घर में बलराम जी ऑलरेडी विराजमान थे क्योंकि रोहिणी बलराम जी की चिरंतन माता है। तो उस बलराम जी में जो रोहिणी के गर्भ में ऑलरेडी थे उसमें शरंद शेष विलीन हो गए और दुनिया के लिए क्या हो गया, गर्भपात, बच्चा गर्भ में आया नष्ट हो गया। आश्चर्य हुआ कंस को, ऐसे कैसे हुआ? बोले कोई बात नहीं, आपको क्या करना है उससे, वो तो आठवें बालक से मिलता है। सभी लोगों के अंदर एक ऐसी भावना हो गई कि देवती का गर्भपात हो गया और उसके बाद में आठवें बालक के रूप में कृष्ण भगवान प्रकट हुए। शास्त्र में लिखा है कि बलराम जी आदि गुरु हैं और देवकी का जो गर्भाशय है जिसमें छह पुत्र आए और नष्ट हो गए, सातवां पुत्र भी नष्ट हो गया, मतलब तो संकर्षित किया गया, वो देवकी का गर्भ जो गर्भाशय जो हमारे हृदय के करा है, हमारे हृदय में वो छह वस्तु होती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये मनुष्य के जीव के शत्रु हैं। छह षड विकार कहते हैं, बड़े भयंकर शत्रु हैं ये, जीव को माया में जकड़े रखते हैं, बार बार यहां पर आने के लिए मजबूर करते हैं, पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, पाप के फलों को भोगने के लिए मजबूर करते हैं। ये अंदर छुपे हुए शत्रु है, बाहर से हमला करने वाले अंदर से ही हमला करते हैं। इसे कहते हैं कि कभी कोई हमारे शर्ट के अंदर अगर हमने कोई ज्वाला रखा, ज्वाला अंदर कोयला जलता हुआ, तो कैसे रहेगा वो, सब जला देगा, कपड़े को जला देगा, अपने को भी जला देगा। वैसे हृदय के अंदर ही बैठे ये कोयले जो अपने अस्तित्व को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और उसको भ्रष्ट भी कर रहे हैं। तो ये छह जो रिपु है हमारे शत्रु है, जब तक इनको नष्ट नहीं किया जाता है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान वही होने पर भी प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि वो छह शत्रु उनको ढके रखते हैं और उनको नष्ट होने के बाद में बलराम जी जो है उस हृदय को स्वच्छ करते हैं और भगवान को आने के लिए या प्रकट होने के लिए योग्य बना देते हैं। इसलिए बलराम जी का जो स्थान है वो आदि गुरु का है। हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी हमारे आचार्य हैं, वो सब बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। बलराम जी की कृपा से ही हम पर कृपा करते हैं, उनकी कृपा लेकर ही उनको गाइड करते हैं। बलराम जी जो हैं वो परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं और परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान के रूप हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरु जी हैं। तो बलराम जी की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है क्योंकि बलराम जी भगवान को प्रकट कराने में सहायता करते हैं। उनकी कृपा के बिना भगवान प्रकट नहीं होती, उनकी साक्षात्कार अनुभूति नहीं होती। तो फिर अभी दिव्यता शुरू होती है इस लीला की। भगवान ने कैसे अवतार लिया, पहले वो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव बड़े हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशमान हो गए, प्रफुल्लित हो गए, सुंदर हो गए, आनंदी हो गए, भयमुक्त हो गए। जेल में होने पर भी इतना आनंद का अनुभव किया उन्होंने। फिर वहां से उनके हृदय से भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए और देवकी के हृदय से फिर वो गर्भ में आ गए और जब वो देवकी के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया हृदय में और गर्भ में, देवकी इतनी सुंदर लगने लगी। कारागृह जो था बोलते ना वो कारे पानी का, ऐसे बोलते जैसे कारागृह में अंधेरा हो जाता है, कारागृह में कोई सुख सुई नहीं होती, बहुत भयंकर अंधेरा होता है, बहुत कठिन अवस्था होती है। ऐसे भयंकर अवस्था में दिव्य प्रकाश आ गया और देवकी इतनी सुंदर हो गई कि उसकी सुंदरता की खबर जो है, उसके शरीर से निकलने वाले दिव्य आभा का जो खबर है वो गंस तक पहुंच गई। गंस आया, देखा मेरी बहन इतनी सुंदर लग रही है, पहले इतनी सुंदर कभी लगी नहीं थी, इसका मतलब मेरा काल जो परम भगवान है इसके अंदर विराजमान हो गया है। उस दिन से उसका भयमय जीवन चालू हो गया, इतना भय के जीवन में आया वो कि उसको खाना पीना सोना पानी के अंदर उठते बैठते सांस में सब जगह भगवान दिखने लगे उसको। हवा आई तो लग रहा कि भगवान हवा के रूप में मारने आ रहे हैं, जल मांगता है तो जल के अंदर दिखाई पड़ रहा है, आईने में देखता है तो उसको लगता है कि उसको दिखाई पड़ रहा है कि व्यक्ति है मैं, लेकिन मेरा सर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो शरीर दिखाई पड़ रहा है। आईने में आप देखते हैं आपको सब दिखता है ना, आपका शरीर दिखता है, मुंह दिखता है। कंस को आईने में देखने पर केवल अपना शरीर दिखाई पड़ता था, मुंह दिखना बंद हो गया। इसको सब अशुभ चिन्ह कहते हैं, ये सारे अशुभ भयंकर चिन्ह जो है कंस को दिखने लगे सब जगह पर, कुत्ता रोने लगे। हाँ होता ना, और क्या होता है उसको, उल्लू उल्लू वो घूमने लगा और गिदड़ आकाश में घूमने लगे, सब अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगे उसके आसपास। वो बहुत भयंकर त्रस्त हो गया, वो इतना त्रस्त कि हर समय उसको पसीना निकलता था और कांपता था। वो नौकर लोग भी थे, महाराज नहीं है यहाँ पर कोई, आप क्यों डर रहे हो? यदि फिर भी डर रहे हो क्योंकि वो 9 महीने जो गर्भ में थे भगवान, उतना सारा समय कंस ने इतने भय में गुजारा, वेट कर रहा था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात, उसने गर्भावस्था में देवती को मारने का प्रयास नहीं किया, फिर भी बालक धन होगा तो बालक को मारूंगा। उस समय भी राक्षस में संस्कार हुआ करते थे। हमारे यहां भी क्या करते हैं हम लोग, बच्चा नहीं चाहिए, अभी अभी बच्चा हुआ है, पैसा नहीं है, यहां पर डिग्री पूरी करनी है, तो मां अपने बालक का गर्भपात कर देती है, अपने बालक को मार देती है। ये कलयुग का लक्षण है। कंस जो है वो द्वापर युग का राक्षस है, इसलिए उस पर भी संस्कार थे। इसने भी गर्भ में अपना काल बस बैठा हुआ है, फिर भी उसने उस गर्भ का वध नहीं किया और वेट करता रहा कि जन्म होगा उसका। अभी यथावकाश भगवान के जन्म का समय आया। इतना सुंदर वर्णन दिया भगवान के जन्म में क्या माहौल था वृंदावन में, गोकुल में क्या स्थिति थी। ऐसे कहा गया कि पृथ्वी एक दुल्हन की तरह सज गई। क्यों सज गई? वो सोच रही थी कि जिन दो चरणों को प्राप्त करने के लिए योगी ध्यानी तपी सब लोग तपस्या करते हैं, जिन चरणों को पूजने के लिए साधु लोग क्या क्या नहीं करते हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए, हाँ उनको धारण करने के लिए, वो दो कदम मुझ पर चलेंगे, मेरी शोभा बढ़ाएंगे, मेरा भाग्य बढ़ाएंगे, सदैव मुझ पर चलेंगे। वो दो कदम, उन दो कदमों के स्वागत के लिए पृथ्वी देवी जो है वो दुल्हन की तरह सज गई। और सज गई मतलब कैसे? रत्न माणिक सब प्रकट हो गए पृथ्वी से। पृथ्वी माता जो है वो सबको रत्न जो सब धातु है सब पृथ्वी से प्रकट होते हैं। हाँ, रत्न गरबा नाम है उसका। तो पृथ्वी पर रात का समय था। अभी देखिए भगवान का जन्म का महीना कौन सा है? श्रावण महीना है, कृष्ण पक्ष है, मतलब जहां पर अंधेरा होता है, दिन दिन अंधेरा बढ़ता जाता है, उस पक्को पक्ष था। तो रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया, उसको बहुत पवित्र माना गया। उस रोहिणी नक्षत्र समय हर्षण योग का समय आया, वृष लग्न का समय आया और अष्टमी तिथि आई। उसके आधी रात को चंद्रोदय के काल में भगवान के जन्म का समय। अभी रात में कोई फूल खिलते हैं? कभी रात में कभी कोई फूल नहीं खिलते, जो फूल खिले होते हैं बंद हो जाते हैं रात के, कमल के हो किसी के फूल हो। लेकिन भगवान के आने का समय आने पर सभी जितने भी जलाशय थे, तालाब थे, जितने भी कुंड थे, नदी थी, सब जगह पर फूल खिल गए, पेड़ों पर फूल खिल गए, फल लग गए, इतने लग गए कि पेड़ की शाखाएं झुक गई भगवान के चरणों को वंदन करने के लिए। और बादल जो है वो हल्के हल्के आवाज करने लगे, मधुर मधुर आवाज, और हल्के हल्के वर्षा करना आरंभ कर दिया। सभी नदी का जल स्वच्छ हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया, दश दिशाएं स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, सब जगह आनंद भर गया। और सब जगह जहां जहां कमल खिल गए वहां वहां कोई कमल सहस्त्र दल के थे, कोई शत दल के थे, 100 पंखुड़ियां 1000 पंखुड़ियां, ऐसे सुगंधि का फल जो फूल है सब जगह प्रकट हुए। उसके अंदर भावरे डोलने लगे और सुंदर सुंदर गीत गाने लगे, भावरे मोर नाचने लगे, गीत गाने लगे, कोयल गूंजने लगी, रात को कोई पक्षी आवाज नहीं करता, सब पक्षी जागृत हो गए दिव्य आवाज में, मानो सबकी आत्मा में चैतन्य आ गया। क्योंकि भगवान जो है सभी आत्माओं के पिता है ना, ममई वांछो जीवलोक की जीव मुक्त सनातन। जब जीव का कल्याणकारी पिताश्री जब प्रकट होते हैं तो सब जीव में अपने आप चैतन्य आ गया। जैसे कि ब्राह्मण लोग जो कंस के द्वारा यज्ञ द्वारा सब यज्ञ उनको बंद करवा दिए, कंस इतना भयंकर राक्षस था, उन्होंने भगवान के आने के भय से सब जगह यज्ञ वज्ञ करना बंद करवा दिया, तो वैसे ब्राह्मण लोग परेशान थे, साधु स्वतंत्र जन। ऐसे कहा गया कि वो भगवान के आने का समय होते ही वो दुखी त्रस्त हृदय में अपने आप आनंद पैदा हो गया और तुरंत उन्होंने यज्ञ का अग्नि जलाना शुरू कर दिया। रात के समय यज्ञशाला अग्नि प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। फिर साधुओं के मन प्रसन्न हो गए, चर अचर सृष्टि आनंदमय हो गई, आकाश में जो बादल थे उन्होंने सागर की लहरों के साथ में अपना ट्यूनिंग किया, मतलब मेल जमाया, और उनकी जो लहरें जिस सुंदरता से आवाज करती है उस आवाज में बादलों ने अपनी आवाज लाई और हल्की हल्की वर्षा करने लगी। उस समय आकाश में क्या हुआ? तो आकाश में स्वर्गलोक में कई देवता है, विद्याधर है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष है, बहुत सारे अलग अलग देवता रहते हैं। वो कोई वाद्य में निपुण है, कोई नृत्य में निपुण है, कोई गायन में निपुण है, कोई अलग अलग कला में निपुण है, रागदारी में निपुण है। तो ऐसे कहा गया कि विद्याधरों की स्त्रियां जो है अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी, किन्नर और गंधर्व जो है वो अलग अलग शुभ रागों में गायन करने लगे, सिद्ध और चारण लोग जो है उन्होंने सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को अर्पण करना आरंभ किया, प्रार्थनाओं को श्लोकों को गुना आरंभ किया। और कुछ देवता, कुछ ऋषिगण और देवता मिलकर उन्होंने पुष्पवृष्टि करना आरंभ किया कंस की मथुरा पर और गोकुल में। बीच में आप बता रहा, मैं आपको भूल गया, जब प्रथम बालक को कंस ने वध कर दिया तो उग्रसेन बहुत परेशान हुए। उग्रसेन ने कंस पर हमला बोल दिया तो यादव सेना थी ना, मथुरा की सेना थी, दो पार्ट में विभाजित हो गई, एक कंस की पार्टी में गई, एक उग्रसेन की पार्टी में गई और दरबार में युद्ध शुरू हुआ। इतना भयंकर युद्ध शुरू हुआ, कंस ने गदा निकाली और सभी उग्रसेन की सेना को समाप्त कर दिया उसने, और खून और मांस का सब थर लग गया उधर दरबार के अंदर, और अपने पिता को अरेस्ट करके कंस राजा बन गया। उस कंस की नगरी पर भी देवताओं ने वृष्टि किया इस समय पर। पुष्प वृष्टि होने के बाद में सब जगह पारिजात, मालती, मंदार, ये सब प्रकार के फूल खिल गए और फूलों की वर्षा में भगवान के ऊपर, देवकी के ऊपर भगवान ने की, सब जगह जय जयकार हो गया। और भगवान जो है ये देवकी वसुदेव जो है ये चंद्रवंशी है, सब लोग चंद्रवंश का उनका जन्म है। तो चंद्र भगवान जो है, चंद्र जो है जो अष्टमी के आकार में थे, उन्होंने सोचा कि मेरे वंश में स्वयं हमारे परम भगवान अवतार ले रहे हैं तो मैं क्यों आधार हूं, जब हमारे पूर्ण चंद्र भगवान अवतार ले रहे हैं मैं भी पूरा हो जाता हूं। तो भी अष्टमी में पूर्णिमा का चंद्र हो गया, ये बहुत अद्भुत घटना है, कभी होती नहीं ऐसी। और सब ब्राह्मणों ने दिव्य ध्वनि किया, श्लोक गाए और कृष्ण भगवान जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे वो बाहर में आए। इस मंगल समय पर सब जगह पर शुभ घटना घट रही थी, उस समय भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए गर्भ से सीधे, और कैसे छोटे नन्हे रोते हुए बालक के रूप में नहीं आए, तो चार भुजा वाले, पूर्ण शरीरधारी, लंबे लंबे बाल वाले, मुकुटधारी, इनका वर्णन किया गया। शंख चक्र पद्म गदा वैदुर्य मणि से भरा हुआ मुकुट पहनकर, इनके घुघराले बाल कंधे पर बह रहे हैं, हाँ ऐसे सुंदर तरीके से कंधे से बह रहे, पूरे शरीर के साथ छाती पर कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स मणि, वैजयंती माला पहने हुए, कमर पर पीताम्बर, कमर करधनी, बाजू बंद, तलाई बंद, अंगूठियां, वहां पर वाघनाथ की बनी हुई चंद्र वाली यहां पर माला पहनी थी उन्होंने, सब जगह पर घुघरू पहने हुए थे पाए पैर में, और सब प्रकार का श्रृंगार करके हुए भगवान प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करते ही वसुदेव ने दंडवत प्रणाम किया, और ऐसे लिखा है कि दंडवत करते ही वसुदेव का जो कंस के प्रति भय था वो सब नष्ट हो गया एक क्षण के अंदर। जो भगवान को ग्रहण करता है वो सब भय से मुक्त हो जाता है। भगवान निर्भयता का मूल है, जो भगवान के चरणों को आश्रय ग्रहण करता है तन से, मन से, इंद्रियों से, नेत्रों से। अभी वसुदेव ने स्पर्श नहीं किया, अभी देखा है वंदन किया है, तुरंत ही भय से मुक्त हो गए। इसलिए आपको किसी को अगर दुनिया में कोई भय है, किसी प्रकार का भय है, या मृत्यु का भय है, जैसे हॉस्पिटल में सब लोगों को लगता है मर जाएंगे, इस मृत्यु के भय को नष्ट करना है भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते ही सब प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांडों के अंदर, निर्माण के अंदर कोई स्थान नहीं है उस भय से मुक्त है। एक ही है भगवान, निर्भयता से भरा हुआ स्थान भगवान के चरण पवन। तो भगवान ने फिर देवकी वसुदेव से संवाद शुरू किया और भगवान ने स्वयं उनको याद दिलाया कि हे वसुदेव और देवकी, ये आप मेरी पहली बार माता पिता नहीं बन रहे हो और मैं पहली बार आपका पुत्र नहीं बन पाऊ, ये तीसरी बार हो रहा है। आपने बहुत जन्मों पहले तपस्या की थी, बहुत घोर तपस्या, 12,000 दिव्य वर्ष तक आपने तपस्या की थी। कैसे तपस्या की थी? इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते हुए, मन और चित्त को मुझ में लगाते हुए, केवल पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर, सब कुछ त्याग करते हुए, इंद्रिय भोग को त्याग करते हुए, एकाग्र होकर आपने मुझे भजन किया था 12,000 साल तक, तब मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिया था, तो आपने कहा था कि आप जैसा आपको पुत्र होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है, भगवान को दर्शन प्राप्त करके वो बोल सकते थे कि आपको मुक्त कर दो, आपको मुक्ति चाहिए, लेकिन उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहा, आप जैसा पुत्र होना चाहिए। आचार्य अगर वर्णन करते हैं कि भगवान की सेवा मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, भगवान की सेवा प्राप्त करना मुक्ति तो तुच्छ है उसके सामने, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है 6 मुक्तियां उनके पीछे हाथ जोड़े जोड़े भागती है, और भक्त जो है भक्ति करता है उनकी ओर मुड़के भी देखता नहीं, और जो व्यक्ति मुक्ति के पीछे भागता है मुक्ति उससे दूर भागती है, और जो भक्ति करता है उसके पीछे मुक्ति भागती है। तो भगवान के सामने मुक्ति का वरदान मांगने का मौका था, फिर भी देवकी ने मतलब उस जन्म में द्रोण और धारा पर सूतक और पुष्पी ने क्या मांगा कि आप जैसा पुत्र होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मुझ जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही आता हूं आपके पुत्र के। तो पुष्पी और सूतपा प्रजापति इनके गर्भ के में पृष्ठी गर्भ के रूप में भगवान ने जन्म लिया, भगवान स्वयं याद दिला रहे। फिर उन्होंने कहा अगले युग में आप अदिति बनकर आए, वसुदेव आप कश्यप बनकर आए, तब आप देवताओं की माता थी, देवता सब देवताओं को आपने जन्म दिया, इंद्र की माता थी आप, तब इंद्र के छोटे भाई के रूप में आपके गर्भ में मैंने जन्म लिया उपेंद्र के रूप में, मेरा आकार छोटा था इसलिए मेरा वामन नाम पड़ा, उसने महाबली का दमन किया। तीसरी बार आप वसुदेव और देवकी बनकर आए और अब मैं आपके सामने खड़ा और इस रूप में क्यों खड़ा हूं, चातुर्भुज होकर शंख चक्र प्रभा गदा धारण करके, ताकि आपको यकीन रहे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वसुदेव और देवकी जो थे वो कंस के भय से भयभीत थी, अगर बालक के रूप में आता तो उनको डर लगता कि कौन है ये, और डरते कि आगे आठों पुत्र तो उसका वध करेंगे, इसलिए उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। फिर भी ऐसे बताया गया है कि देवकी का जो वात्सल्य था वसुदेव से श्रेष्ठ था, इसलिए भगवान का दर्शन करने के बाद भी भगवान की तरफ जो भावना थी उसके वात्सल्य की उतनी श्रेष्ठ थी, उसका फिर भी भय नहीं गया। ये सब सुनने के बाद भी उसने कहा कि फिर भी आप एक काम करो, आप इस रूप को नष्ट करो, कहीं छुपा लू मैं आपको, इसलिए छोटे बनकर आया इस कंस के आपको मैं छुपा लू कहीं। लेकिन वसुदेव को भगवान ने कहा कि तुरंत आपको मुझे लेकर जाना है नंद के गोकुल में, और वहां पर गोकुल में यशोदा को कन्या हुई है उसको वापस लेकर आना है। तो स्वयं मुयोग माया जो है जो भगवान की बहन के रूप में उसका जय जयकार हुआ है वो यशोदा के गर्भ से उसी समय जन्म लेगी, और ऐसी दिव्य योजना भगवान की कि वसुदेव सॉरी देवकी के गर्भ यशोदा के गर्भ से योग माया कन्या का जन्म होते ही सारा गोकुल सो गया, बहुत घनघोर वर्षा भी हो रही थी, सारा गोकुल सो गया और कन्या रोई भी नहीं, और यशोदा भी सो गई ग्लानि से थकान होने से, और उसको समझ में नहीं आया कि कन्या हुई कि पुत्र हुआ है, तो वो सो गए, सब लोग सो गए योग माया के प्रभाव से। उस समय वसुदेव भगवान के आदेश को लेकर टोकरी में भगवान को डालकर जब कारागृह से निकले तो योग माया के प्रभाव से सारे पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले खुल गए, जिस श्रृंखला में वसुदेव देवकी को बांध के रखा था वो श्रृंखला भी खुल गई, और जैसे चलते गए अपने आप दरवाजे खुलते गए और सीधे बहुत दरवाजे पार करके वसुदेव जी बाहर निकले तो आकाश में बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, वसुदेव चलते रहे तुरंत उसके बीच में शेषनाग आ गए, हजारों खंड के साथ में वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। आचार्य बताते हैं कि वसुदेव के पीछे पीछे क्यों गए अनंत शेष, क्योंकि अनंत शेष बलराम जी का अवतार है, उनका अंश है, और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसकी रक्षा हेतु अनंत शेष के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं हमेशा, इसलिए भगवान को उन्हें छत्र दिया और वसुदेव के पीछे पीछे जाने लगे। और जब यमुना जी के पास में आए तो यमुना जी का इतना भयंकर वर्णन यहां पर दिया गया है, यमुना जी भयानक आवर्त शत जब उर्म फेनिल आकुला, ऐसी उसकी अवस्था बताई है, फेन भरा हुआ था उसके ऊपर और बहुत गोल गोल लहरें निकल रही थी और वो जल इतना जोर जोर से उछल रहा था, भयंकर आतंक जैसा पानी चल रहा था, उसका स्तर जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा था, जैसे वसुदेव ने प्रवेश किया पहले तो घुटने तक एड़ी तक पानी था, फिर घुटने तक आया, फिर कमर तक आया, फिर छाती तक आया, फिर नाक तक आया, वसुदेव डूब गए, चिल्लाने लगे कोई लो मेरे लाला को ले लो, डूब रहा है। उतने में एक शास्त्र में ऐसा वर्णन दिया है एक शास्त्र में कि वो टोकरी से भगवान पानी में गिर गए, बहुत डर गए उसमें, तुरंत उनको भगवान को उन्होंने पकड़ा अपने कटोर में। एक शास्त्र में वर्णन दिया है कि भगवान ने केवल अपने पैर बाहर निकाले और जमुना जी ऐसे ऊपर आ गई और पैरों को स्पर्श किया और तुरंत रास्ता दिया उन्होंने, क्योंकि यमुना देवी को भगवान ने गौलोक धाम से यहां भेजा था। और यमुना देवी कब से इंतजार कर रही, कब आएंगे हमारे ठाकुर जी, कब मैं उनकी सेवा करूंगी, जैसे आए तो व्याकुल हो गई, उनका चरण स्पर्श कर दिया, इसलिए उनका स्तर उन्होंने बड़ा बड़ा कर ऊपर ऊपर गई भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए। तो यमुना जी इतनी पवित्र है कि जन्म होते ही पहले भगवान ने यमुना जी में स्नान किया, एक कथा के अनुसार पूरा स्नान किया, एक कथा के अनुसार चरणामृत तो बन गया ना उनका, कम से कम चरण स्पर्श तो किया ना उन्होंने, इतनी यमुना जी मानो आज उसकी अवस्था कितनी खराब पड़ी हुई। हम सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि यमुना जी भगवान का प्रथम देवकी के द्वारा भी स्नान नहीं हुआ था उनका, यशोदा के द्वारा स्नान तो बाद में हुआ जन्म के अर्थवर्ष में, सबसे पहले स्नान उनको यमुना जी ने कराया, इतनी पवित्र है यमुना जी, भगवान का चरण अंग का जल है। तो फिर जैसे ही यमुना जी ने रास्ता दिया, मानो जैसे भगवान रामचंद्र को समुद्र ने रास्ता दिया था, वैसे उसने सीधे चल पड़े, गोकुल में गए, देखा ना पुत्र रो रहा है ना कन्या रो रही है, सब लोग सोए हुए हैं, हाँ घर में अंदर प्रवेश किया उन्होंने, सोचने के बाद कैसी है, घर में ताला लगा नहीं था, जो कड़ी भी लगी नहीं थी, हाँ गोकुल में कोई भय नहीं था, कोई चोर नहीं था उस समय, इसलिए दरवाजे खुले थे, हम लोग दरवाजा बंद करके सोते ना, घर है हमको कोई चोर आया, उस समय गोकुल में दरवाजे खुले थे इसलिए वसुदेव जी घुस सके अंदर उसके, तो देखा कि कन्या सुंदर प्रकाशमान यशोदा के बगल में थोई हुई है, तुरंत वहां कृष्ण को रखते हैं और कन्या को उठाकर फिर दोबारा चल के जाते हैं, दोबारा जमुना जी रास्ता देती है और कारागृह में प्रवेश करते हैं, उनके पीछे पीछे सारे दरवाजे बंद होते हैं, ताले लगते हैं, एक के बाद अंदर अपने कारागृह पहुंचते हैं तो उनके ऊपर श्रृंखला भी अपने आप चढ़ जाती है और उसके बाद में कन्या रोना शुरू करती है, जब वो रोती है तब सारे पहरेदार उसके आवाज से उठ जाते हैं, उसके पहले इतनी बिजली गड़करी, इतने आकाश में आवाज हुआ, इतना सब रंगोर वर्षा हुई, कोई उठा नहीं, इसीलिए उस जन्म को दिव्य कहते हैं, ये सब भगवान के आदेश से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो इस तरह से जब प्रवेश किया, रोए, आवाज सुनकर पहरेदार उठे तो सब लोग भागते गए कंस के पास, बीच रात में कंस बेचारा, उसकी नींद तो हराम हो गई थी, उसकी नींद तो आना मुश्किल था, इतने दिन से सोया नहीं था, जग ही रहा था भय के कारण, कब आएगा। जब खबर सुनी कि रोना हुआ, भाग के बीच में आया रात को तलवार लेकर, और कंस ने प्रवेश किया जब कारागृह में, तो देवकी रोने लगी, भैया तुम इतने गुरु कैसे बनते हो, ये पुत्र नहीं है कन्या है। तो कंस ने बहुत ठाका मार के हंसा, देखो अभी देवता लोग में झूठ बोलने लगे, आकाशवाणी में जोड़ने लगी, आकाशवाणी तो कहा था कि पुत्र होगा आठवा और कन्या हुई, तो उसने कहा कन्या को मार दी, तुमको भय तो पुत्र से था, तुम्हारा पुत्र तो अभी नहीं हुआ है, पुत्री हुई है, मैं वादा करती हूँ इस पुत्री का तुम्हारे लड़के के साथ शादी करूंगी। हाँ भाई का लड़का बहन की लड़की शादी हो सकती है, या बहन की लड़की लड़का भाई की लड़की शादी हो सकती है, तो देवकी ने वादा किया जब बड़ी होगी तो आपके पुत्र के साथ विवाह करूंगी उसका, लेकिन इसको छोड़ दो, कम से कम तुमने मेरे 6 बच्चों को मारा है, एक तो कन्या मुझे पालने दो प्रेम करने के लिए, वात्सल्य के लिए, ये बड़ी क्रूरता से उसने उसको खींच लिया, उससे जोर जोर से हंसते हुए क्रूरता के साथ खींच लिया और उसी तरह से पैरों में लेकर उसको पटकने वाला ही था, तो उसके हाथ से वो कन्या छूट गई, आकाश में चली गई और आकाश में 1,00,000 सफेद घोड़ों से बना हुआ रथ जो है प्रकट हो गया, उस पर ये कन्या जो है 8 भुजा वाली देवी बनी, सा अलंकृत पूरे अलंकार के साथ, मुकुट के साथ, 8 हाथों में 8 शस्त्र बने हुए उसके, दिव्य प्रकाश आकाश में छा गया रात के समय, और उसी के साथ साथ सारे देवता जो है अपने हाथ में अलग अलग पूजा के सामग्री लेकर इस देवी की पूजा करने लगी। और कंस देख रहा है सब आकाश में, जानता है जिससे वरदान लिया था ना शिव जी से, वो उसकी पत्नी समझता है उसको, इधर नतमस्तक हो गया और हंसते हुए देवी ने कहा, मूर्ख कंस, तेरा काल कहीं और जन्मा हुआ है, क्यों तुम देवी को कष्ट दे रहे हो, बंद करो कष्ट देना उसको। और एक जगह पर वर्णन ऐसा आता है ब्रह्म वल्लभ पुराण में, उसी समय देवी ने कंस को और एक चेतावनी दी कि सर्व गुण संपन्न, सर्व ऐश्वर्य संपन्न आदि शक्ति जो है वो हिमालय के पास पैदा हो गई है, नहीं विंध्या विंध्याचल के पास पैदा हुई है, और मैं स्वयं प्रकट हो गई हूं हिमालय की गोद में, और आदिशक्ति जो है विंध्य पर्वत के घर में पैदा हुई है। तो फिर वो राधा रानी का जन्म हुआ विंध्याचल के रूप में। फिर कंस ने पुतना को भेजा उसको हरण करने के लिए, जब हरण किया उन कन्याओं का तो आकाश में जब उड़ी तो वो अग्नि पैदा हो गई उसके हाथ में, पर एक कन्या को वो छोड़ती गई फेंकती गई, तो एक कन्या रावल में, राधा रानी और अष्ट सखियां अपने अपने घर में गिर गई और उनका जन्म हुआ। वायुदेव ने उसको 1.5 साल संभाला, उसके बाद में राधा रानी जो है तो कृष्णभानु महाराज के घर के कुंड के कमल में प्रकट हो गई। ये कथा भी उसके साथ में आती है, लेकिन भागवत जी में सुखदेव जी ने उसको वर्णन नहीं किया है कि समय के अभाव का 7 दिन के बाद परिषद की मृत्यु होने वाली थी, तो क्या क्या बताए हम उनको, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। तो जैसे ही देवी की बातें सुनी कंस ने, हताश हो गया कंस, अरे मैंने क्या किया, आठवां पुत्र तो हुआ ही नहीं, मैंने आकाशवाणी में विश्वास किया और इतना सारा गलत काम किया, देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर गया वो, और बड़ी शास्त्र की बातें करने लगा। उन्होंने कहा, देवकी माफ कर देना, मैंने इतना बड़ा अपराध किया तुम्हारा, क्योंकि ये सब तो काल का प्रभाव है, तुम तो जानते हो काल सबसे प्रभावी है, काल के सामने कौन कुछ क्या कर सकता है, काल तो अपने हाथ से काम करवाता है, इन बच्चों को तो मरना ही था इसलिए मेरे हाथों से वो उनको मरवाया गया, लेकिन मैं तो केवल निमित्र मात्र था, मेरे मन में तो ऐसा पाप नहीं था, लेकिन काल ने मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्रों का वध करवाया, ऐसे तुम मुझे माफ कर देना, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तुम खुद शोक करती हो उसके लिए, ऐसी बड़ी बड़ी खुद के बचाव के लिए, हाँ खुद को इस दर्द से कि पाप का फल मिलेगा मुझे, इस दर्द से वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। लेकिन देवकी और वसुदेव इतने विशाल हृदय थे कि उस स्थिति में भी अपने बालक का, जिसने 6 बालकों का वध कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को उसने तत्क्षण माफ कर दिया, और तत्क्षण वसुदेव देवकी को उन्होंने मुक्त भी कर दिया। कंस ने समझा वारण से हो, मुझसे उनको कोई भय नहीं, वो माफी मांगे तो चला गया कंस जो है, और दूसरे दिन जाकर उसने अपने सभी साथियों को दरबार में जाके जो जो कुछ हुआ सब बताया। अभी कुसंगति कैसे देखो होती है, थोड़ा बहुत तो राक्षस होने पर भी जब शुद्ध भक्तों के सामने उसने सर झुकाया तो थोड़ा सा मति शुद्ध हो गई थी उसकी, लेकिन फिर कुसंगति में गया फिर मति भ्रष्ट हो गई, कैसे एकदम दीन होकर पश्चातापी होकर उसने अपने सहेलियों सभी सखी क्या कहते हैं उसको अपने दोस्तों को मंत्रीगणों को बताया कल क्या हुआ, तो वो क्या कहते हैं, अरे कंस महाराज आप इतना क्यों डरते हो, इतना रोने की जरूरत क्या है, ये पश्चाताप रोना धोना क्या जरूरी है, अरे आपके तलवार के चमक से देखो सारे देवता लोग कांपते हैं, ब्रह्मा जी तो हमेशा भजन में बहुत व्यस्त रहते, सिद्धि भजन में व्यस्त रहते, वो अपना अपना काम करते रहते, तुम डर किससे तुमको, और विष्णु जो तुमको लगता है डर उनसे, वो अपने भक्तों के हृदय में छिपे हुए हैं, कहां टाइम बाहर निकलने के लिए, तुम क्यों डरते हो, हम सब लोग 10 दिन में जिसका जिसका जन्म हो गया ना सब बालकों को जाके मार देंगे मथुरा में और कुल में सब जगह, हमारा काम खत्म हो जाएगा, चिंता मत करना। और कहा उन्होंने विष्णु जो है उसको बल प्राप्त होता है साधुओं के यज्ञ से, तपस्या से, नाम जप से, साधना से, साधुओं का जप बंद करो, यज्ञ बंद करो, सब सेना निकलती है, सब चलो यज्ञ बंद करते, सब मन मूत्र डालते हैं उसके यज्ञ के अंदर, हाँ सब पाठ वाठ बंद कर देते हैं, और एक तरफ से सब बालकों को मारना आरंभ कर देते हैं, उस चक्कर में ही पुतना को भेज देते हैं, पुतना भी बालक को मारते 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 आती है और उसका भी वध हो जाता है। बड़ी लंबी लंबी कथा है, तो भगवान का जन्म जो है दिव्य है, समझने वाली बात यह है, और यह अगर हमको समझ में आया कि जन्म का क्या हमारे जीवन में अर्थ है, क्यों आते हैं भगवान, क्या जरूरत है उनको आने की, इतनी गौलोक वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं उनके, इतने प्रेमी भक्त हैं, तो कभी स्वार्थ नहीं रखते रही है, निस्वार्थ होकर अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, दिन रात क्षणों क्षण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को छोड़कर यहाँ पर आने की जरूरत क्या है, यहाँ पर तो हम लोग रहते हैं, उनको भूलकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, भोग लेना चाहते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हम लोग, यहाँ पर पाप होते हैं, यहाँ पर इंद्रियों का भोग होता है, यहाँ पर आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैविक क्लेश है, इतना सारा कष्ट यहाँ पर है, सब लोग भगवान को छोड़कर भूलकर विद्रोह करके यहाँ पर रह रहे हैं, क्यों आना चाहिए उनको यहाँ पर? वो आते हैं क्योंकि उनको हम पर प्रेम है, करुणा करते हमारे पर, हमारे अवस्था को देखकर को दुख होता है। जैसे कोई पिता को अपना पुत्र जब झगड़ा करके घर छोड़ के भागता है तो पिता को बड़ा दुख होता है, और पिता का अपमान होने के बाद भी पिता बार बार कोशिश करता है कि बेटा किधर है, क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, क्या कर रहा है, भूखा है, रास्ते पे सो रहा है, क्या कर रहा है, और कोशिश करते रहते हैं कि पुत्र को वापस बुलाया जाए इस दोस्त के माध्यम से, किसी चाचा के माध्यम से। जैसे दुख पिता को दुख होता है, पुत्र छोड़ के चला जाता है विद्रोह करके, तभी पिता प्रेम के वश पुत्र की याद नहीं भूल सकता। वैसे हम सब लोग भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, फिर भी हमारे प्रेम की वजह से, करुणा की वजह से भगवान बार बार यहाँ पर आते हैं। एक बार नहीं आते, संभवामी युगे युगे, अनंत बार अनंत रूप में बार बार जन्म लेते रहते हैं। ये कौन है ये भगवान? हाँ, ये वो भगवान है जो केवल एक ही ऐसे व्यक्ति है जो जीव को जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकता है, और कोई देवता नहीं है, कोई विष्णु का स्वरूप नहीं है जो भगवान जो जीव को जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकता है। एक ही व्यक्ति है मुकुंद, जिसका नाम है श्री कृष्ण, जो ही केवल वो अधिकार रखते हैं जो जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं और अपने धाम में निवास दे सकते हैं। वो भगवान की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सारे देवता उनके चरणों में लीन है, सारे अवतार उनसे निकलते हैं, मैंने बताया पहले से आपको, सारे अवतार उनमें लीन हो गए, उनसे निकलते हैं, वो अवतार ही है, स्वयं अवतार नहीं, स्वयं अवतारी पुरुष है, परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सभी देवताओं में से भगवानों के भगवान है, सबके स्रोत है, वो आते हैं स्वयं, किसी और को नहीं भेजते। क्यों? ताकि यहां जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, लीला करेंगे, तो तुम हमारे जैसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। हाँ, कंस को मारना था तो क्या होता? छोटा रूप धारण करके उसके हृदय में जाकर उसकी हार्ट को काटते ना, तो वही मर जाता, कोई मुष्टि युद्ध खेलने की जरूरत नहीं थी, है ना? चाणूर को मारो, मुष्टि को मारो, हाथी को मारो, हाँ सभी योद्धाओं को मारो, भयंकर युद्ध करो, रामव्रत को मारो, जरदस को मारो, कोई जरूरत नहीं थी उनको करने की, केवल हम और आपको उनकी कथा सुनने का मौका मिले बार बार, इसलिए वो आते। हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर जाके वो काट सकते थे उसके हृदय को, लेकिन बाहर खंभे से आए, भयंकर युद्ध किया, पेट फाड़ कर उसके हृदय को तोड़ डाला उन्होंने। क्यों किया? आपको और हमको उनके बारे में चर्चा करने का मौका मिले, विविधता के साथ, विथ वैरायटी, ऐसा नहीं कि एक ही रूप में आगे बार बार बोर हो रहा है, ऐसा नहीं, कभी नरसिंह, कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी कुर्मा, कभी राम, कभी परशुराम, कोई वामन भगवान, कभी आदि पुरुष, आदि सिंह, अलग अलग वैरायटी में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? हम और आपको मौका देने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवा करने का मौका देने के लिए, श्रवण करने का मौका देने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, उनके प्रति आकर्षित होने के लिए, उनको याद करने के लिए। जब कोई सनसनीखेज घटना होती है ना, दिन भर आप उसके बारे में बोलते रहते हैं, है ना, बम फट गया कोई मथुरा में, हम लोग 8 दिन तक बोलते रहते हैं उसके बारे में, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो भगवान हम सबका नेचर जानते हैं, तो वो सनसनीखेज घटना करना चाहते हैं हर चीज को। हम गिरिराज को उठा लिया उन्होंने, इतने बड़े पुतला को चूस चूस कर मार डाला, हाँ, तुलावर्त को हवा में लेकर नीचे पटक दिया उसने, इतने बड़े अर्जुन वृक्ष को ताल, उसका जड़ बहुत मजबूत होता है, बालक के रूप में उसको गिरा दिया और देवताओं को मुक्ति दे दिया उन्होंने। क्या क्या नहीं किया, माखन चुराया, घरों घरों में जाकर गोपियों को आनंद दिया, क्यों? ऐसी घटना करते हैं जो प्रभावित करके दिल पर छा जाती है, ताकि दिन रात उसकी याद करते रहे। क्या करते थे परिवासी लोग, कल जो घटना हुई उसको आज गीत बनाकर गा रहे हैं, सब लोग दूध निकाल रहे हैं गाय का, गोबर साफ कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं गाय को धो रहे हैं, मंथन कर रहे हैं दही का, कल की घटना को आज गीत बनाकर गा रहे हैं, वही गाते रहते दिन भर, वही चर्चा है, क्या किया कृष्ण ने आज, क्योंकि वो सबसे बड़ा हीरो है। हाँ, हम सब लोगों को कोई ना कोई हीरो चाहिए, है ना, कोई कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म स्टार है, कोई रेसलर है, कोई ओलंपिक चैंपियन है, हमारा कोई ना कोई हीरो है जिसके बारे में हमको बात करना है, कोई रिश्ता नहीं हमारा उसका, लेकिन वो आ गया क्या, गोल्ड मेडल मिला क्या, वो फाइनल में आया कि नहीं आया, तेंदुलकर सेंचुरी पूरा हुआ कि नहीं, कोई लगता नहीं हमारा माता पिता या भाई बहन, लेकिन हमको हीरो की जरूरत है। लेकिन हमारा असली हीरो कौन है? ये जन्म मृत्यु में बंधने वाले ओलंपिक स्टार हमारे हीरो नहीं है, हमारा सबसे बड़ा हीरो है श्री कृष्ण। जो ऐसी लीला करता है जिसको कोई भूल नहीं सकते, वही लीला है गोवर्धन उठाने की। 50 बार कहो, 50,000 बार कहो, आपको बोर नहीं होगा, क्योंकि लीला में इतनी विविधता है, इतना आनंद है। तो ये सब जीव को कल्याण करने के लिए, जीव को अनुपम भेंट देने के लिए, जीव पर अपार अपरंपार कृपा करने के लिए भगवान आते हैं, जब उनको आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से, अपने बल से, कृपा के वश में आते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं हमारे रमेश बाबा जी महाराज कि भगवान को एक रोग है, हाँ भगवान ऐसे रोग मुक्त है, लेकिन एक रोग उनको है, कृपा करने का रोग। जब देखते हैं किसी को तो कृपा करते रहते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकते हैं प्रामाणिक भक्त के सामने कृपा करने से। उस कृपा करने के रोग से वश होकर यहां पर आते हैं कृपा बरसाने के लिए, तब हमारा कल्याण होता है। और जब वो कृपा बरसाते हैं उसका लाभ लेना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ताकि वो पूरी कृपा जो वो देना चाहते हैं वो हम ले सके। नहीं तो उनको देना इतनी कृपा है, हम ले रहे इतनी सी, तो लेने में भी कंजूसी करते हैं, क्या लाभ है उसका। पूरे खुले हृदय से, भक्ति भावना से, हृदय को खोलकर उस कृपा को स्वीकार करो, उसलिए जीवन दिया गया है। तो जीवन का क्या लाभ है, भोग करने के लिए कोई सुख नहीं मिलता उसके अंदर, धन से कोई सुख नहीं मिलता, यश मिलने से कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, सब कुछ टेम्पररी यहां पर है, कोई चीज टिकने वाली नहीं है, ना जीवन टिकने वाला है, ना काल टिकने वाला है, सब कुछ छीना जाएगा हमसे। यथावकाश काल के साथ में सब जो जो हम चाहते हैं, जिस पर हमारा दिल लगा हुआ है, सब चीजें काल खींच लेता है, इसलिए यहां पर आनंद नहीं है। यहां पर आनंद है तो केवल भगवान के नाम में, आनंद है तो केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में, इसलिए उसी पे दिल लगाना चाहिए, अपने कार्य भी उनकी सेवा में करना चाहिए, अपने इंद्रियों से जो कर्म इंद्रिय है उनसे काम करना है तो भी उनकी सेवा में करना है, और ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करना है तो उन्हीं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, कान से उनके बारे में सुनना है, मुंह से उनके बारे में बोलना है, उनका ही नाम जपना है, तब जाकर ये जीवन धन्य होगा, तब जाकर हर क्षण हमारे जीवन में जन्माष्टमी होगी। केवल श्रावण के वद्य अष्टमी को नहीं होगी, हर दिन हर क्षण होगी, और वही जन्माष्टमी का उद्देश्य है, इसलिए भगवान यहां पर आते हैं। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना करता हूं, ये ऐसे अनोखी लीला करने वाले भगवान, जिसकी लीला की किसी अन्य अवतार भी तुलना नहीं कर सकते, ऐसी भव्य लीला जो भगवान कृष्ण भगवान करते हैं। सभी ऐश्वर्यों के मालिक है वो, सब ऐश्वर्यों के स्रोत है, हमारे अंदर जो भी दिखता है सौंदर्य धन बिन उनकी तरफ से आता है, वो परम भगवान जो है, सभी विष्णु भी उनकी तरफ से निकलते हैं, वो परम भगवान पृथ्वी पर आकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जन्म मृत्यु में फंसने वाले जीव को कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण कथा एक ही माध्यम है, एक ही ऐसी दवा है जन्म मृत्यु के रोग को, जो श्री कृष्ण कथा सुनता है वो उस रोग से मुक्त हो जाता है। उन्हीं का नाम, उन्हीं की लीला श्रवण करना है और गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग उनके अवतार के उद्देश्य को सफल करने में सफल रहें, ताकि उनका जो उद्देश्य है, जो उनको देना है, वो लेने में आप सफल रहें। और लेने का एक ही माध्यम है, एक ही चीज है, कृतज्ञ हृदय होना चाहिए, ऋणी हृदय होना चाहिए, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए, जो भी जीवन में हो रहा है थैंक यू वेरी मच, जो हो रहा है उसके साथ में जूझना नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है उनकी कृपा मानकर उसको स्वीकार करना चाहिए, और सदैव उस कृतज्ञ की भावना से उनके गुणनाम का गुणगान करते रहना चाहिए। जहां कहीं भी रहे, जिस भी अवस्था में रहे, शरीर के बूढ़े अवस्था में, जवान अवस्था में रहे, सुंदर अवस्था में, पुरुष अवस्था में, आरोग्य की अवस्था में, या मरणासन्न अवस्था में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, जिस अवस्था में भगवान का स्मरण होता है वो अवस्था पवित्र और शुद्ध और दिव्य होती है। जन्म मृत्यु लगे हुए दुनिया में, इसमें सबको लगे हुए, ऐसे नहीं कि जिसको रोग हुआ है वही मरने वाला है, सब मरने वाले हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बम स्पोर्ट से मरता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई बुढ़ापा बूढ़ा होकर मर जाता है, मरना सभी को है, लेकिन उस मरने को भी पवित्र करना है तो एक ही रास्ता है, वो भगवान का नाम है। हमारी बुद्धि भी पावन हो जाती है, मृत्यु एक उत्सव बन जाता है। जो भगवान को याद करता है उत्सव क्यों बनता है, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मुझे अंत समय में याद करता है मेरे उत्सव में धाम में पहुंच जाता है, इसलिए वो उत्सव हो जाता है। अपने दुख भरे दर्द भरे भयानक मृत्यु को अगर उत्सव बनाना है तो एक ही रास्ता है वो भगवान का नाम। उसको भी प्रैक्टिस करेंगे उस समय हम याद कर सकते हैं, और आज उत्सव बनाएंगे तो हमारी मृत्यु भी एक उत्सव बन सकता है। हमारा हॉस्पिस जो है ना ये उत्सव केंद्र है, दुख भरी घटनाओं का केंद्र नहीं। यहां पर भगवान की याद दिला दिलाकर मृत्यु को उत्सव में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी दिव्य जगह है, यहां पर भगवान के धाम का रास्ता खुल जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं यहां पर। वो सबके लागू है ना, जो मरणासन्न अवस्था में है या अभी आरोग्य संपन्न अवस्था में है, सबको जाना है इस दरवाजे से। और वो दरवाजे यहां से बड़ी आकार में खुल जाते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान का नाम ले जाता है, मरीज को भी उसको देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।